الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب استحباب التبشير والتهنية بالخير قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم دوست بزرگوں اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں باب قائم کیا, باب استحباب التبشیر, نیک کام کرنے پر خوشخبری دینا, مبارکبادی دینا, اچھے کاموں پر مبارکبادی دینا یہ مستحب ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو جو میری بات کو سنتے پھر فالو کرتے ہیں, احسنا اچھی باتوں پر, ان کی اچھی باتوں پر. ابن کثیر فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حق اور سب سے اچھا دیکھا, اس کے بعد کلام کی تعریف کی اور اتباع کی. بعض مفسرین نے اس آیت کی تحت میں لکھا ہے احکام حسن ہے, بعض احکام حسن ہے اور بعض احکام سے بھی زیادہ احسن ہے. مثال کے طور پر بدلہ لینا حسن ہے, اگر کسی نے مارا ہے ایک تماچا تو دوسرے اس کو ایک تماچا مار دے, یہ اس کا بدلہ ہے, یہ حسن ہے. لیکن معاف کر دینا احسن ہے, اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. اسی طرح بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کرے, ظلم کا بدلہ اتنا لے لے, لیکن اگر معاف کر دے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم, ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے اپنی طرف سے, بڑی رحمت, بری رضامندی اور ایسے باغات کی ان کے لیے جو ان کی ہمیشہ کی نعمت ہے. اس سے پہلے اللہ پاک نے ہجرت کا ذکر کیا, اللہ کے راستے میں نکلنے والے, معرکہ میں جانے والے, ان کا ذکر کیا جس میں اپنا وطن, اپنی فیملی, اپنے ریلیٹو, اپنے فرینڈز اور اپنی محبوب مال سب کو چھوڑا, اور ظاہری بات ہے ٹو لیو فیملی بہائنڈ, ٹو لیو پراپرٹی بہائنڈ, ٹو لیو اور بلوڈ تھنگز بہائنڈ اینڈ گو ان دا پاتھ آف اللہ از ناٹ ایزی, اٹ از ویری ویری ہارڈ. اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے سارے اموال, ساری فیملی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے کام کے لیے جانے والوں کی خوشخبری فرمائی ہے, خوشخبری دی, اور ساتھ میں اللہ پاک نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ میں اللہ تم سے راضی ہوں. ऐसी नेमतों के बारे में फरमाया, फरमाया तुम्हें वो जो नेमत देने वाला हूं, एक तो खुशखबरी जन्नत की, नंबर दो में अल्लाह राजी, नंबर तीन में तुम्हें ऐसी नेमतें दूंगा जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, नईम मुकीम, बल्कि वो रोज बरोज एवरी डे विल इंक्रीज। जैसे हमारे यहां प्रॉफिट बढ़ता है 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नेमत जन्नत में दूंगा कि आज आपने खाई कल उससे भी बेहतर है, परसों उससे भी बेहतर है, फिर उससे भी बेहतर है, जन्नत की नेमतें बढ़ती चली जाएगी। आज एक एप्पल खाया उसका अलग टेस्ट है, कल खाया उसका अलग है, परसों का उससे बेहतर है, फिर उससे बेहतर है। जैसे हम दो चार खाने में तारीफ करते हैं, यहां तो फॉर एवर एंड एवर जन्नत की नेमतें, एक तो कभी खत्म नहीं है और उसमें रोज बरोज इजाफा होता रहेगा। और चौथी चीज है, ये हमेशा की जन्नत होगी मुकीम, उस जन्नत से अब तुमको कभी निकाला नहीं जाएगा। ये जो आदमी अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की अहकाम को पूरा करने के लिए निकलता है कि मेरे अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, मेरे अल्लाह ने कहा रोजा रखो, मेरे अल्लाह ने कहा जकात दो, मेरे अल्लाह ने कहा हज के लिए निकलो अगर तुम पर हज फर्ज हो गई, मेरे अल्लाह ने ये कहा, मेरे अल्लाह ने ये कहा गरीब की मदद के लिए निकलो, जैसा भी काम करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, अब ये बंदा उसको करने के लिए कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, तो अल्लाह ताला उसको चार नेमतें अता फरमाते हैं। एक तो जन्नत देता है, नंबर दो अल्लाह की रजा उसको मिलती है, नंबर तीन ऐसी नेमत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया की एक दरख्त पर आपने एक बार उसका फ्रूट उतार लिया, अभी नहीं मालूम आइंदा साल लगेगा कि नहीं लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, छोटे होंगे या बड़े होंगे, मीठे होंगे या खट्टे होंगे, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं है। एक एप्पल का आपने खाने का इरादा किया, ऑटोमेटिकली विल ब्रेक इटसेल्फ, वो टूटेगा, तुम्हारे सामने आएगा, इट सेल्फ इज गोइंग टू कट ऑफ, वो कटेगा और तुम्हारे सामने उसको तुम खाएंगे, इतने में तुम वहां देखोगे तो दूसरा एप्पल लग चुका है। ये है खालिदीन फिया अबदा, हमेशा हमेशा नेमत है, और ऐसी कि फिर जन्नत में तुम्हें ये नेमत मिलने के बाद अब जन्नत से तुम्हें कभी निकाला नहीं जाएगा। दुनिया में खतरा है, मौत आएगी या कुला हो जाएगा या मेरा बाग खत्म हो जाएगा या ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अल्लाह फरमाते जन्नत में तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। ये अल्लाह पाक फरमाते हैं युबश्शिरहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु वरिदवानिन वजन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम, ऐसी नेमत जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, कभी खत्म होने वाली। इसीलिए अल्लाह पाक ने सूरह फुस्सिलत में एक आयत बयान फरमाई है, फरमाया वअबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, खुशखबरी सुनो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा था। जन्नत में रोज आना, जन्नत की खुशखबरी कभी मौलाना सुनाते हैं, कभी जमात वाला सुनाता है, कभी कौन सुनाता है, कभी कुरान से पढ़ते हैं, कभी हदीस से पढ़ते हैं, कभी तालीम में सुनते हैं, जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी है, हम सुनते ही रहे सुनते ही रहे, आज तो आंखों के सामने है वो जन्नत। फरमाइए वो जन्नत है कुरान में, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, दुनिया में जिस बंदे ने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुमस्तकामू फिर उस पर मुस्तकीम रहा, यानी अल्लाह के रब को मानने के बाद उसके फरमान को पूरा करता रहा, उसके हुक्म को पूरा करता रहा, और पूरा भी कैसे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, उसकी मौत के वक्त फरिश्ते उसके पास आएंगे, मलिकुल मौत से पहले 300 फरिश्ते, रिवायत में आता है कई फरिश्ते उसकी चारों तरफ बैठ जाते हैं और उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, जन्नत दिखाई जाती है। अलैहिमुल मलाइका, अल्ला तखाफू वला तहजनू, अब तेरी मौत होने वाली है, खौफ नहीं करना, डरना नहीं, डरना नहीं है। इसलिए कि इंसान डरता है मेरा क्या होगा, डरता वो है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है। जो ईमान वाला होगा वो डरता नहीं है, उसको तो वैसे ही सामने खुशखबरी नजर आ रही है, जन्नत नजर आ रही है, उसके उसके उसको हासिल करने का ये मुश्ताक है। ही इज वेटिंग, हाउ आई कैन गेट दिस प्लेस, हाउ आई कैन गेट दिस अबोट ऑफ जन्नत, दिस प्लेस ऑफ जन्नत, ये कोशिश करता है जाने की। इसलिए उसकी आंखें घूमती है इंतकाल से पहले, जब रूह निकलने से पहले उसको बशारत दी जाती है। ग्लोस्टर में हमारे एक रिश्तेदार औरत का इंतकाल हुआ, तो रिश्तेदार थे, कहते तुमको यहां से जनाजे की नमाज के लिए आना है, तो मैं चला गया उनके इंतकाल पर। मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई तो उनके शौहर ने मुझे सुनाया कि बीवी के इंतकाल होते वक्त वो बार बार कहने लगी, मुझे दीवार पर कुरान की ये जन्नत की आयत नजर आती है, कभी ये आयत नजर आती है, कि वो पढ़ती जाती है, देखती जाती है, हालांकि वो हाफिजा नहीं थी, उसको सामने कुरान की आयत नजर आती थी और उसमें जन्नत की बशारतें हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में कैसे, जैसे मैंने सुनाया कि वो हिंदुस्तान में एक औरत, बुढ़ी औरत का इंतकाल हो रहा है और वो कुछ बोल रही अरबी में, जिसमें अरबी में बोल रही है, लेकिन सामने वाले किसी को उनके बेटों को समझ में नहीं आ रहा कि, तो दे कॉल द मौलाना साहब, इमाम साहब, तो मैं देखो ना हमारी माँ कुछ बकवास कर रही बोल रही है, हमें तो समझ में नहीं आता है, बिकॉज दे डोंट नो अरबिक एंड शी ऑल्सो डोंट नो अरबिक, बट शी वॉज टॉकिंग इन अरबिक। सुभानअल्लाह, तो वो मौलाना साहब ने कान लगाकर सुना, तो वो तो कह रही है तो अरबी बोल रही है, और वह क्या बोल रही है, वो कह रही है इन हादैन हादान रजुलैन यकूलान, ये दो आदमी मुझे कह रहे हैं, उदखुली अल जन्नत, क्या कह रहे हैं, ये दो आदमी मुझे कह रहे हैं उदखुली, जन्नत में दाखिल हो जा, हालांकि वो कहां अरबी बोलने वाली थी, लेकिन अरबी बोल रही है कि ये दो आदमी मेरे दो फरिश्ते थे, वो किसे कह रहे हैं जन्नत में दाखिल हो जा। यह पूछा बच्चों को कि तेरी अम्मी का कोई अमल है ऐसा, का कोई अमल नहीं, बस अजान होती थी तो सारे कामकाज बंद करके अजान को सुनती थी, कोई बात करता उसको भी स्टॉप करती थी और रिस्पेक्ट से अल्लाह के नाम को सुनती थी। जन्नत की बशारत, नेक काम पर जन्नत की बशारत है। इसीलिए फरमाया या तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब मोमिन बंदे की मौत होती है, मोमिन बंदे की, तो फरिश्ती आए पड़ते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाकीजा सोल, ए पाकीजा रूह, हिरजिरी चल चल, इला रब्बी की, कहां चलना है मुझे, तेरा रब बुलाता है, और वो भी कैसे, अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुरान क्या पढ़ रहा हूं मैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बी की राजियतम मर्दिया, अल्लाह तुझसे राजी और तू भी अल्लाह से राजी, फदखुली फी इबादी, पहले अल्लाह के नेक बंदों की जियारत कर ले, अंबिया की जियारत कर ले, साबा की जियारत कर ले, तबीइन की जियारत कर ले, जिनके नतीजे में तुम्हें दीन पहुंचा, जिनकी सोबत में रहकर तुम सही रास्ते पर चले हैं, अल्लाह उनको कैसे भूलेगा, पर इनकी जियारत कर, खुली जन्नती, फिर जन्नत में दाखिल। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, उनका बेटा, बस बुजुर्ग के इंतकाल के वक्त बेटा करीब में बैठा हुआ था, कलमे की तलकीन कर रहा था अपने बाप को, नेक साले आदमी लेकिन कलमा पढ़ रहा था, तो इतने में किसी ने दरवाजा खिटखिटाया, तो बुजुर्ग ने कहा जाओ बेटे देखो दरवाजे पर कोई आया है। वो दरवाजे पर गया, दरवाजा खोला तो एक अननोन आदमी है, ऐसा कागज दिया, जाओ अब्बू को दे दो, जाओ बाप को दे दो। वो लेकर आया, कहा देखो क्या पढ़ो क्या है, उसमें लिखा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، بچاؤ ان کو بلاؤ، دروازہ کھل کے دیکھا تو ڈسپیئر ہے، وہ تو فرشتے. نیک اعمال پر اللہ کے وعدے ہے، کیا فرمایا؟ لا تخافو الا تخافو ولا تحزنو. حزن ہوتا ہے آدمی کو، غم جس کو کہتے ہیں، وریز، بچوں کی پرابلم، گھر کی پرابلم، بزنس کی پرابلم، اس کی وریز ہے، غم ہے. فرمایا قبر کا بھی خوف نہیں تجھے، آخرت کا بھی نہیں، پیچھے کا بھی غم نہ کر، اللہ لک آفٹر کرے گا، تو چل دونوں طرف اللہ مدد کرے گا. اللہ تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، یہ وہ آیت ہے. اللہ بشارت دیتا ہے اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے اللہ؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تو تمہارے دوست بنے، اللہ کہہ رہا ہے، دنیا میں بھی، وفی الاخرہ، اب آخرت میں بھی تم میرے دوست آ جاؤ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. فرمایا جو تیرا جی آدمی چاہتا ہے، کبھی کوئی آدمی کوئی دے تو وہ کھا لیتا ہے، میں بہت سارا کھانا رکھا ہے، بہت سارا. جی کون سا فوڈ کہتے ہیں اس کو؟ جو چاہے لے لو کہتے ہیں نا، وہ یہ پورا رکھا ہوا ہے. تو ایک آدمی کہا خادم صاحب میں لیا دیتا ہوں، تو اس نے تو وہ لے کر آ گیا، کھا لیا. پھر کہا نا مجھے بھی ذرا دیکھنے دو کون کون سا، میرا جی چاہتا ہے کوئی اچھی چیز ہو. دو چیز ہوتی ہے نا. اللہ کہہ رہے جو میں نے وعدہ کیا وہ تو میں دوں گا، لیکن تیرے دل میں جو آئے وہ بھی لے لے. وَلَكُمْ فِيهَا، جنت میں، مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ، جو تیرا دل چاہے لے، خواہش کھا لے جو بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مہمانی کرے گا اللہ. کیا کہہ رہے؟ ہاں وہ کیا کہہ رہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ ٹیبل کلوتھ ہے، دس از اے دسترخوان فرام دا غفور الرحیم، فرام اللہ ہو از آفٹ فورگیونگ موسٹ مرسیفل، بہت بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، ویلکم کرے گے اللہ. اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، تو بات سے بات یاد آ رہی ہے، ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ ابن سلام واز اے یہودی عالم، ہی واز عالم آف دا تورا، ہی واز اے بگیسٹ عالم ان جو کمیونٹی. Abdullah was not also, but he also was great Ali. Allama sahab, great Ali. He heard about Prophet sallallahu alayhi wa sallam migrated from Makkah Mukarramah to Madinah Munawwara. Let me go and visit him. Ja kar dekhna hai. Milne ke liye aaye. Aur unka chehra dekh kar pehchan liya ki haan ye wahi hai jinka zikr hamari تورات میں ہے، جن کا ذکر ہماری تورات میں. تو انہوں نے کہا اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تین کوشچنس ہیں، اگر ان کا آپ جواب دے تو میں مسلمان بن جاؤں گا. اس میں دوسرا کوشچن جو ہے وہ یہ تھا، بتاؤ جنت میں سب سے پہلا، اول طعام، پہلا کھانا کون سا ملے گا؟ اور دوسرے دو کوشچن تو چونکہ ہمارے ٹاپک سے مطابق ہی ہے، پہلا کھانا جنت میں جنتی کو اللہ کیا دے گا؟ آئی بات سمجھ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا ان کو یہ تینوں سوال کے جواب دے دو. ان کا جو سوال ہے कि सबसे पहला खाना जन्नत में क्या मिलेगा, उनको कहो अल्लाह तबारक व ताला जन्नती, जन्नत की मछली, क्या भाई, जन्नत की फिश, ये फिश नहीं यार जिसमें से गंदगी भी निकले साफ करना पड़े, है ना, जन्नत की फिश, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उस फिश और उस मछली का जिगर, कभी मछली खाने वालों ने भी मछली का जिगर नहीं देखा होगा, खाया नहीं होगा, लेकिन जन्नत की मछली का लीवर, क्या बोलते हैं इसको, लीवर जिसको बोलते हैं, कलेजी, वो जन्नत की मछली की कलेजी अल्लाह तबारक व ताला सबसे पहले जन्नतियों को खिलाएंगे, ऐसा खाना जो तुमने कभी खाया नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आई बात समझ, तो उसके बाद तीनों सवाल के जवाब उन्होंने सुन लिए, तो उसके बाद कहा कि आप यहूदियों को बुलाओ और उनको मेरे बारे में पूछो वो क्या कहते हैं, ठीक है, कहा मैं छुप जाता हूं पीछे, कलमा पढ़ लिया अशहदु अल्लाह, जब सवाल के जवाब सुने फौरन कलमा पढ़ लिया, कहा मैं पीछे छुप जाता हूं, बुलाओ उनको, मेरे सरदार बुलाया, उनको पूछा कि भाई अब्दुल्ला इब्ने सलाम तुम्हारी कम्युनिटी में कैसा आदमी है, कहा बहुत अच्छा और अच्छे का बेटा है ये, यानी उसका बाप भी अच्छा था, ये भी बहुत जबरदस्त, सैयदुना व इब्ने सैयदुना, हमारा मास्टर है ये तो, और द मास्टर सन आल्सो, हिज फादर आल्सो वाज मास्टर। इतने में अब्दुल्ला इब्ने सलाम निकले, फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल, तो उन्होंने कहा सबसे खराब आदमी तू और सबसे खराब आदमी का बेटा। आज तक ऐसा ही है, लेकिन वो कमाल कर दिया उन्होंने, सवाल भी ऐसे, वो कहते हैं कभी बच्चा पैदा होता है तो बाप जैसा लगता है, कभी बच्चा पैदा हो तो मां जैसा, अल्लाह कभी वो कैसे है, ये कैसे हो गया, ये भी सवाल, ये कल ही सबक गुजरा बुखारी शरीफ में पढ़ा था मंडे को, तो कहा अगर शोहर का मनी पहले जाए औरत की बच्चादानी में तो बच्चे का चेहरा जरा बाप जैसा होता है, और अगर औरत माँ का अगर पहले जाए औरत का बीवी का तो बच्चा माँ जैसा लगता है, अल्लाह ने जिब्रील सलाम के जरिए से बतलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवाल थे। मुझे बात बतानी थी कि टेबल क्लॉथ जन्नत में बिछाया जाए, आओ मेरे बंदे अब क्या होगा, फरिश्ते सलाम कहेंगे, खादिम सलाम करेंगे, और कुरान करीम में सूरत यासीन में अल्लाह फरमाया सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह भी सलाम करेगा, वयुस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, किसी को क्या और क्या पिलाएंगे, लेकिन बाज वो खुश नसीब होंगे जिन्होंने दुनिया में बड़ा मुजाहिदा किया, दीन के लिए बड़ी इबादतें की है, अस्तगफार तोबा नमाज रोजा जकात गुनाहों से बचना वगैरह वगैरह वगैरह, दीन का काम तबलीग का काम दाई वगैरह सब कुछ उनके लिए क्या, वसकाहुम रब्बुहुम, अल्लाह खुद गिलास लेकर आएगा, आ मेरे बंदे लो पी मैं पिलाता हूं, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब अल्लाह खुद पिलाएगा, ले आई बात समझ में। जन्नतियों का भी कभी इंशाल्लाह जन्नत की बात करेंगे, ये जन्नत में क्या क्या नेमतें हैं, एक ही नेमत नहीं हजारों नेमत है, एक एक नेमत पर हजारों हदीस है जी, हूर है तो हूर कैसी है, कैसी बनी है, कहां से बनी है, किसको कैसी हूर मिलेगी, जन्नत के बर्तन है तो कैसे है, कैसे मकान है तो कैसे है, कैसे है वगैरह वगैरह, दरख्त है तो कैसे है और उसके फ्रूट है तो कैसे है, ये सब एक अजीब मंजर है जन्नत में जो आंखों से नजर आएगा जब इंसान आमाले सालेहा करके अल्लाह के पास जाएगा, तो अल्लाह तबारक व ताला, अब देख लीजिए यहां अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ये खुशखबरी मरते वक्त ही सुना दी जाती है जन्नत की, तो जन्नत में जाएगा यूं, आगे तो फिर बात की बात है। हां इसीलिए हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब कब्रों से बंदे उठेंगे कयामत के दिन, उस वक्त फरिश्ते ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे, उठ चल चल जन्नत में। कब्र से निकलते ही जन्नत की खुशखबरी, मरते वक्त भी जन्नत की खुशखबरी, कब्र से उठेगा जन्नत की खुशखबरी। हजरत वकीब ने जर्राह रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ये भी मुफस्सिरीन है, मुफस्सिर है और मुफस्सिरीन भी फरमाते हैं, तीनों मकामात पर यह खुशखबरी सुनाई जाएगी। तीनों मकाम कौन कौन से? तीन भाई, रूह निकलते वक्त भी बशारत सुनाई जाएगी जन्नत की, कब्र में उतारा जाएगा तो कब्र में भी जन्नत की बशारत, और कब्र से जब उठाया जाएगा उस वक्त भी जन्नत की बशारत। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी में इस बात को नकल फरमाते हैं। अब कितना खुश नसीब होगा कि मरते वक्त ही जन्नत की बशारत है, कब्र में जन्नत की बशारत, उठेगा कयामत की खौफनाक जगह से उनको कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि फरिश्ते ऑलरेडी वेलकम करने के लिए आए हैं। इसकी मिसाल मैं दिया करता हूं, एक मिसाल है समझने के लिए कि एक आदमी बुकिंग करता है कि भाई मुझे दुबई जाना है या और कोई जगह जाना है, और होटल बुक करता है और मुझे टैक्सी लेकर अपने आदमी को एयरपोर्ट पर भेजना है, तो आप जब निकलते हैं अपने प्लेन से बाहर तो वहां ऐसे लेकर खड़े होते हैं, भाई इस नाम का आदमी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो आपको ले जाता है सब कुछ करवा करके, स्टैम्प वगैरह लगवा करके, आपको वीआईपी की तरह जा करके आपका सामान भी ले लेता है, सामान भी उतार लेता है, सब कुछ करके गाड़ी में भी रख देता है, गाड़ी का दरवाजा भी खोल के आपको बिठा देता है, आराम से आपको अंदर में कुछ फ्रेश माउथ करने के लिए भी देता है, आराम से जाता है, वहां पर भी आपको चाबी दे दी जाती है, आप चले जाओ सामान हम तुम्हारा लाएंगे, कब्र से उठेगा। ये तो एक मिसाल है, लेकिन आखिरत के मिसाल, फरिश्ते कब्र के पास है कि मैं भी आ रहा है प्लेन से, कौन से? ये बरजक के प्लेन से आ रहा है, मरने के बाद ये कब्र में बरजक में गया, वहां से आ रहा है, अब उसके लिए हम यहां पर खड़े हैं वेलकम के लिए, उसको फरिश्ते के आ जा चलो ये रास्ता में चलना है, तुम्हारा होटल किधर है? जन्नत में इधर है। मेरी बात सुन में आ रही? वाबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदू, बशारत देना, किसी के लड़का पैदा हुआ बशारत दो, माशाल्लाह मुबारक हो, है ना, अल्लाह ने खुद बशारत भेजी है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बच्चा देने की बात हुई कुरान में, वबशिरहु बिगुलामिन हलीम, हम आपको बशारत देते हैं, मुबारकबादी देते हैं एक बुरदबार बच्चे की, है ना, मुस्तहब है किसी की यहां नेक काम हो, अच्छी चीज हो तो उसकी बशारत दो, घर लिया मुबारकबाद आपको माशाल्लाह, अल्लाह आपको आपकी घर को इस्तेमाल करने के लिए आसान फरमाए, फुला और फुला शादी मुबारकबादी दो। अल्लाह के नबी दिया करते थे, दुआ पढ़ा करते थे, बारक अल्लाह लक मुबारक अलैकुम वजमा बैनकुम खैर, खैर अल्लाह खैर के मामले फरमाए तुम दोनों के अंदर। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह पाकीज़ा औलाद दे मुझे, नेक औलाद दे, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा, जाओ उनको बशारत दो इस्माइल अलैहिस्सलाम की, खुशखबरी सुनाई। आज ही मैं पढ़ रहा था तर्जुमे कुरान, उसमें कुरान पढ़ रहा था तर्जुमे वाला, तो उसमें तर्जुमा भी तो मैं देखा कि 26 पारा एंड होता है और 27 पारा शुरू होता है, तो 26 पारे की एंड में हल अता का हदीस दईफ इब्राहिम अल मुकरमीन, जे टू और थ्री एंजल्स आए, जिब्राइल मीकाइल इसराफिल आए, कहा मेहमान बनकर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकान में और बैठ गए, खूबसूरत थे और पहचानते तो थे नहीं कौन आओ, लेकिन अंबिया थे, मेहमान का इकराम करते थे, जल्दी जल्दी गए और बछड़ा भून लिया और लेकर सामने रख दिया, तो उन्होंने कहा हम तो खाते नहीं, फाउ जसमिन खीफा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जरा खौफ पैदा हुआ, क्या बात है भाई खाना नहीं खा रहे हो, समथिंग रॉन्ग ही है, कालू ला तखाब, डरो नहीं, हम तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हैं और बशारत लेकर आए हैं बच्चे की, इतने बीबी आगे पीछे से फसकत वजह कितने से ऐसा फसकत वजह वकाल अजू सुना कि मुझे कैसे बच्चा होगा, मैं तो बूढ़ी हो गई पांच हूं। वकालत अजूज़ुन अकीम, अल्लाह कुरान में भी लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल, ऐसा करते ना वो कुछ काम नहीं हो सकता है तो क्या होगा। तो फसक्कत वजहः वकालत, कहने लगी अजूज़ुन अकीम, मैं बूढ़ी पांच हूं मुझे कैसे होगा। काल कज़ालिक, फरिश्तों ने कहा ऐसा ही होगा। काल रब्बुक, तेरे रब ने कहा है, बस अल्लाह ने कह दिया होगा, अब कैसे होगा वो जानते, चाहे तुम बुढ़ी हो 85-90 की हो लेकिन हो, अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। तो ये उस वक्त का फबशर ना हो बेगुल्लाम मिन हलीम, बेटा ऐसा हलीम उसका मिजाज कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती इस्माइल अलैहिस्सलाम की। देखो ना वो क्या कह रहा है, उस वक्त जाहिर हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़बह करने का इरादा किया, तब पता चला कि अल्लाह ने हलीम क्यों कहा था। तब बाप को पता चला कि साहबजादे ने ऐसा सबर और बुर्दबारी जाहिर की जिसे इंसानी अकल हैरान और परेशान थी, हैरान और परेशान थी। उस फर्जंद की विलादत का वाकिया जब हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि मुझसे कोई औलाद नहीं हो रही, तो उन्होंने समझा मैं तो बांझ हूं। दूसरी तरफ फिरौन मिस्र ने हजरत सारा को हाजरा अले रजी अल्लाह ताला अन्हा हदिया दी थी, तो हजरत सारा ने हजरत हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम अता कर दी, जिसे हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे दी, जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया, फिर हजरत हाजरा के बतन से इस्माइल पैदा हुआ। तो मैं समझा रहा था कि बशारत देना ये मुस्तहब है। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं वम्रातुहु काइमा फदहकत फबशरनाहा बिइसहाक वमिन वराई इसहाक याकूब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया खड़ी थी, हंसी, मुझे बशारत, ताज्जुब हुआ। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम की बशारत दी, मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी, कुरान में सारी आयतें मौजूद हैं। और इन तमाम से मालूम होता है कि मुबारक, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत दी, मसीह इस्मुहु मसीह कहा। आप जिस दुखी बीमार के हाथ फेरते थे ऐसे, मसीह क्यों कहा, जिस बीमार को ऐसा हाथ फेर देते वो तंदुरुस्त हो जाता, इसलिए उनको मसीह कहा। मसीह के माना हाथ से छूना। ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा सफर में रहते थे, उनका मकान नहीं था, इसलिए भी उनको कहा जाता है मसीह। खैर ये तो बशारत के बारे में है, लेकिन खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत के अमल की खुशखबरी दुनिया में दी गई। खदीजा कौन है, बहुत नेक सालिया थी, हमें पता नहीं। कुरान करीम में है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। हमारी सबसे पहली मां कौन बनी, खदीजतुल कुबरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी खदीजतुल कुबरा से हुई, सबसे पहली मां हमारी खदीजतुल कुबरा है, जिनसे तीन बेटे चार बेटियां पैदा हुई, या दो बेटे चार बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, फातिमतुल ज़हरा एंड ताहिर। ये दो बेटे पैदा हुए और चार बेटियां पैदा हुई, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहले दो मरतबा शादी हो चुकी थी, दोनों का इंतकाल बारी बारी हो गया था और उनसे दो बेटे थे, दोनों बाद में बेटे نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بڑے ہوئے اور دونوں صحابی بنے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مالداروں نے خطبہ دیا نکاح کے لیے کہ ہم سے نکاح کر لو، ہم سے نکاح کر لو، چونکہ مال دولت والی تھی. ان کے والد کے پاس بہت مالدار تھے، لیکن والد کا انتقال ہوا تو گھر میں رہ کر ایک عورت نے اپنے بزنس کو سنبھالا. بہت مالدار، لیکن یہ پردے وغیرہ کی اور آئے تھے تو بعد میں نازل ہوئی، یہ عورت تھی جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچایا تھا. نصیب والی اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے باہر ایک میلہ لگتا تھا، جلسہ لگتا تھا، وہاں صرف عورتیں جمع ہوتی تھی. تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں تورات کا پڑھا ہوا ہوں، تورات میں لکھا ہوا ہے، سنو عورتوں میں تمہیں سنانے والا ہوں، سناتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے جو آخری نبی بننے والا ہے. خوش نصیب ہوگی وہ عورت جو ان کے ساتھ شادی کرے گی، ان کے ساتھ رہے. تمام عورتوں نے اس آدمی کو دھکا دیا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، ٹیک یور تھنگز اینڈ گو. لیکن خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے میں نے اپنے دل میں وہ بات بٹھا لی کہ میں کوشش کروں گی. دعائیں کرتی رہی اللہ سے اور ذکر و تسبیح جو زمانے میں ٹھیک کرتی رہی، اللہ پاک نے اس کا نصیبہ کھول دیا. پھر سنتی رہی کہ یہ ابو طالب کے مکان میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بڑے ہو گئے، آپ کسی کا مال لے کر آپ ایسا کرو، بزنس کے لیے چلو، بزنس کے لیے جاؤ، شام ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. تو کہا میں کسی کو نہیں کہوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا کر کے تمہارا مال مجھے دو، ٹھیک ہے کوئی مجھے بلائے تو ان کے مال کی تجارت کے لیے میں جاؤں گا. ادھر سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تلاشی کر رہی تھی اپنی خادمہ نفیسہ کو، کہا جو بعد مسلمان ہو چکی، جا کر کے اللہ کے رسول کو کہو، یعنی اس وقت تو رسول نہیں بنے تھے، جا کر کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہمارا مال لے کر آپ بزنس کے لیے جاؤ شام. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے حبیب آئے، مال سارا لیا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا میسرہ، اس کو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، ان کا سامان. لیکن جاتے ہوئے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت کی غلام سے کہ دیکھو یہ عرب کا بہت معزز آدمی ہے، بہت نیک ہے، میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت نیک آدمی ہے. تم تین کام کرنا، ایک یہ کہ راستے میں نئے نئے جتنے بھی واقعات پیش آتے تم دیکھتے رہنا، اللہ کے حبیب کی معجزات نہیں دیکھتے رہنا. دوسرا تم ان کے غلام بن کے رہنا، ان کی خدمت کرنا. لیکن وہ کہاں، اللہ کے نبی ان کی خدمت کرتے تھے. اور پھر تیسری بات ان سے آرگیومنٹ نہ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ جو فیصلہ کرے راضی ہے. اور میں دیکھتا رہا سب کچھ. جی وہاں پہنچے شام میں مارکیٹ میں، سارے نے اپنا اپنا مال، جیسے مارکیٹ میں رکھتے ہیں جیسے سنڈے مارکیٹ ہوتی ہے، کیسے اپنا اپنا ٹینٹ ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا مال، اور کوئی لات کی، کوئی عزا کی، کوئی منات کی قسم کھا کر بیچتے ہیں. تو کسی نے آ کر اللہ کے حبیب سے کہا آپ بھی قسم کھا کے بیچ. فرمایا نہیں، میں کیوں قسم کھاؤں ان لوگوں کی جن کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان کی قسم میں کیوں کھاؤں بھوٹوں کی. جن کو چاہیے میرا مال لے جائے، نہ لے جائے کوئی حرج نہیں. میسرہ خود کہتے ہیں کہ سارے قسمیں کھا کر دوڑتے تھے کسٹمر کے پیچھے، کسٹمر یہاں نبی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور اتنا فائدہ ہوا، اتنا پروفٹ ہوا، اور پروفٹ لے کر واپس آئے کہ زندگی میں اتنا پروفٹ نہیں ہوا خدیجۃ الکبریٰ کو. اللہ کے حبیب کی مدد ہوئی. اور پھر آج جب میسرہ آ گئے، فرمایا راستے میں ایک درخت کے نیچے سوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے. میں بھی تو ایک راہب اینڈ پوپ اینڈ پادری ہے اپنے چرچ سے نکلا کرسچن, اور اس نے بتایا کہ کس مصرا کو وہ جانتا تھا, چونکہ یہ بھی مصرا جاتا رہتا تھا بزنس کے لیے, لیکن اس وقت نبی کے ساتھ یہ سفر میں. تو اس راہب نے کہا مصرا یہ کون کس کو لایا ہے تو اپنے ساتھ؟ کہا یہ عرب کا بہت معزز آدمی ہے, بہت نیک صالح آدمی ہے, ان کو لے کر آیا ہوں. فرمایا نہیں, اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھ سکتا سوائے نبیوں میں سے کوئی نبی. معلوم ہوتا یہ آئندہ چل کر نبی بننے والا ہے. لک آفٹر ہیم. یہ ایسے میسرا خود کہتے ہیں جہاں گرمی آتی تھی ہم چلتے تھے, بہت گرمی, عرب کی گرمی مشہور ہے, لیکن کہاں ہم پر اللہ کے نبی کی وجہ سے یہ بادل سایہ کرتا تھا جیسے امبریلا ہے, چلتے تھے بادل سایہ کرتا تھا. میں نے بہت کچھ دیکھا راستے میں. میں جب آ گیا مکہ مکرمہ, خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کیسا رہی, کیسی رہی بزنس کا؟ بزنس بعد میں, میں بزنس کا نہیں بتاؤں گا, میں خود نبی کا غلام بن چکا ہوں. مجھے وہ پوچھو کہ نبی کے ہاتھ پر کیسے کیسے واقعات ظاہر ہوئے. گھر بھی ڈاؤٹ. تو حضرت خدیجہ نے کہا ہاں میں نے بہت کچھ سنا ہے, سناؤ سب کچھ. سنایا سب کچھ, جتنے بھی مرکل تھے راستے میں ہونے والے سب کچھ سنایا, پروفٹ اتنا ہونا, پھر درخت کے نیچے راہب کا بشارت دین, پھر یہ دھوپ وغیرہ ساری چیزیں, بادل کا سایہ کرنا اور میسرا کی خدمت کرنا. کہا زندگی بھر میں کسی کا خادم رہا, میں چار ہی دن میں نبی کا غلام بن گیا, چار. اور پھر مکہ کے بڑے بڑے قریش سردار نے, مالداروں نے خطبہ دیا, ہم سے شادی کر لو خدیجہ سے. کہا فرمایا کسے شادی کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ بھیجا. ایک لمبی داستان ہے کیوں ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی اس حدیث میں. خدیجہ الکبریٰ, یہ وہ خدیجہ ہے کہ آسمان سے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیجا. جبرائیل نے کہا آپ خدیجہ سے کہو اللہ نے سلام بھیجا. یہ وہ خدیجہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس بوڑھی ہی کو یاد کرتے رہتے ہو, وہ تو چلی گئی دنیا سے. وہ تو بوڑھی تھی نا, 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی, اور پھر مکہ مکرمہ میں 13 سال کے اندر میں, 12 سال کے اندر میں ان سے 4 بیٹیاں, 2 بیٹے یا 3 بیٹے پیدا, الگ الگ روایت ہے, بیٹے پیدا ہوئے, قاسم طاہر. تو کہا اس بوڑھی کو یاد کر تو چلی گئی, میں جوان ہوں. حضرت عائشہ فرماتی وہ تو ظاہری بات ہے 10-12-15 سال کی گئی عائشہ, اور ابو بکر صدیق کی بیٹی, سبحان اللہ. تو اللہ اکبر, حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تیرا زمانہ بہت آسانی کا ہے, ہدیے باہر سے آتے ہیں. زمانہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا سخت تھا, میں باہر سے آتا تھا, تیرے پاس تو آتا ہوں تو ہدیے آتے ہیں. ان کے پاس میں باہر سے آتا تھا مکہ میں, لوگ مجھے پتھر مارتے تھے, خون نکلتا تھا, وہ اپنے دوپٹے سے میرے خون صاف کرتے تھے, لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے گھر کے سامنے, میری چھوٹی چھوٹی فاطمہ, ام کلثوم, رقیہ باہر جاتی تھی تو ان کو پیر میں کانٹے چبھتے تھے, نبی اور میری بیوی خدیجہ ان کانٹوں کو نکالتی تھی بچوں کے پیر سے. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا, بائیکاٹ کیا تھا 2.5 years تک, اس بائیکاٹ میں ساتھ دینے والی میری بیوی تھی, مال بھی اس کا, جان بھی اس کی تھی, میں کیوں یاد نہ کروں. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی, دروازہ نوک کیا, فرمایا جاؤ عائشہ دیکھو لگتا ہے خدیجہ آ گئی, کیونکہ آواز ایسی تھی, آواز سے اپنی خدیجہ کو یاد. اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے جو ایک ہی موٹی سے میں نے بنایا ہے, کھوکھلا موٹی. اللہ قرآن فرماتے ہیں کھوکھلا موٹی ہے, उसमें महल बनाया है, कह दो खदीजा से वहां कोई शोर शगब, कोई तुम्हें ट्रबल करने वाला नहीं होगा। मक्का में तो लोगों ने आपको ट्रबल किया, ये खदीजा अल-कुबरा जी। हां एक वाकया मुझे याद आया, अभी तो नबूवत नहीं मिली है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के हबीब आए शादी के बाद मार्केट बाहर से आए, बाहर गए थे सफर, वापस आए तो बहुत गमगीन थे। खदीजा अल-कुबरा ने बीवी ने पूछा आप क्यों गमगीन हो, फरमा मैंने बाहर देखा एक काफिला है बहुत गरीब है, उनके पास माल नहीं है, मेरे पास होता तो मैं दे देता, क्योंकि उनके पास तो नहीं था, तो खदीजा अल-कुबरा के पास घर पर था, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हुआ। गरीब की मदद करने वाले थे अल्लाह के हबीब, हर वक्त जिसको भी परेशानी देखे जो भी कुछ हो ले जाओ, जो भी कुछ ले जाओ जी, ऐसा। अल्लाह अकबर, हमने अपने अकाबरीन को देखा, हमारे बहुत सारे किसी ने ऐसा दिया दे दिया हजरत लो बस, तो फौरन ले लिया, जज़ाकअल्लाह, लो भाई तुम ले लो, लो भाई तुम ले लो, नहीं अपने जेब में रखा, तुम ले लो इसे। अल्लाह अकबर, फरमाया जाओ सरदारों को बुलाओ, बुलाओ। अब जब बुलाने के लिए गए उनको जो गरीब लोगों को, तो देखा इतने में हजरत खदीजा अल-कुबरा ने माल का इतना बड़ा ढेर लगा दिया कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खड़े रहे तो पीछे छुप जाए, इतना बड़ा। फरमाया गवार हो, मैंने ये सारा माल अल्लाह के रास्ते में इनको दे दिया है खदीजा अल-कुबरा। इसीलिए उनको क्या क्या बशारतें मिली है। खैर यहां जो हदीस है, हदीस खदीजा अल-कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खुशखबरी दी, उनके लिए जन्नत में मोतियों का घर जिसमें न शोर होगा न थकावट होगी, यह हदीस बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है। हजरत खदीजा को जन्नत की खुशखबरी दुनिया में दी गई, उनकी जन्नत की खसूसियत को भी बयान किया गया कि तुम्हारी जन्नत कैसी है, अब तुमको मकान दूंगा मैं, ऐसा ऐसा है तो कितना कुछ हो जाता है, या जन्नत का मकान है बता दिया अल्लाह ने दुनिया में, ये तो बुखारी के हदीस, कोई शकी नहीं। फरमाया बेबैतिन फिल जन्नत मिन कसबिन ला सखबिन फी वला नसबिन, ऐसा जन्नत में मैंने मकान बनाया है जो मोटियों का एक मकान है जिसमें न शोर होगा न थकावट तुम्हें होगी, उसमें तू चली जाना, अंदर से खाली, उस मोटी के अंदर ही तमाम महल बना हुआ, चारों तरफ मोटी है अंदर में महल है, जन्नत में शोर भी नहीं। दुनिया के आदमी शोर करते रहते हैं, जन्नत में सुकून होगा, किसी किस्म की आपको तकलीफ नहीं होगी। इन तमाम बातों से और भी बहुत सारी बात है, जिसमें जैसे अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम आपके इर्द गिर्द बैठे थे कि हमारे साथ लोगों में अबू बकर उमर भी थे, अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और हजरत अबू हुरैरा से को जाओ लोगों को जन्नत की बशारत दे दो, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएंगे, वाकया बुखारी शरीफ में है। मालूम होता है कि बशारत देना अहादीस में मौजूद है। इंशाल्लाह आइंदा वेनसडे को अगर बाकी रहा तो मैं इसी पर बात बयान करूंगा कि बीर अरीस का वाकया क्या था। बीर अरीस एक कुआं था, उसका वाकिया है, उसमें बशारत है। इसी तरह कलमाए तौहीद की गवाही देगा वो जन्नत में दाखिल होगा, उसका वाकिया। हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अनु के आखिरी वक्त का वाकिया कि कैसा था उनका आखिरी वक्त कैसा था वगैरह, इंशाल्लाह इन वाकियात को हम बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला हम सब को भी जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिक वल अज़ीम सुल्तानिक, या अरहमर राहिमीन या ज़िल जलाल वल इकराम, या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम पर रहम फरमा, या अल्लाह हम पर करम फरमा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमें भी नेक काम पर जन्नत की बशारत सुना दे, जन्नत सुना दे, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा, जहन्नम से कब्र के अजाब से अल्लाह तेरे गुस्से से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मेरे उम्मतियों अल्लाह से जन्नत मांगो, अल्लाह से जन्नत मांगो, अल्लाह हम तुमसे जन्नतुल फिरदौस मांगते हैं, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, अल्लाह कब्र के अजाब से पनाह मांगते हैं, हमें भी जन्नत की बशारतें सुना देना, मरते वक्त, कब्र में उतारते वक्त और कब्र से उठते वक्त अल्लाह हमें जन्नत की बशारत सुनाना। या अल्लाह या रहमान रहीमीन, हमारी आल औलाद को नेक बना, हमें और हमारी आल औलाद को नेक बना, हमारे आल औलाद को नेक बना, आंखों की ठंडक बना, हाफिज़े कुरान बना, आलिम दीन बना, दीन के दाई बना, इलाहुल आलमीन कुर्रत ऐन बना। ऐ अल्लाह में इखलास नसीब फरमा, लिल्लाहियत नसीब फरमा, अल्लाह बीमारियों से सारी उम्मत की हिफाजत फरमा, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा, उम्मत के लिए हिदायत के फैसले फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं इलाहुल आलमीन उन सब की मगफिरत फरमा, और जितने जिंदा हैं सबको दीन पर इस्तकामत नसीब फरमा, दीन पर इस्तकामत नसीब फरमा, कलमे की मौत नसीब फरमा। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें हिदायत के आमाल फैलाने वालों में से बना, दीन के काम करने वालों में से बना, मरते दम तक दीन का काम करने के हमें तौफीक नसीब फरमा, और मौत आए दीन का काम करते करते तेरे नबी के घर में हमें मौत नसीब फरमा, इलाहुल आलमीन मस्जिद नबवी में मौत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, हरमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह बे औलाद उनका औलाद साले नसीब फरमा, बे औलाद उन औलाद साले नसीब फरमा, औलाद वाले हैं उनके औलादों को आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के फरमा बरदार बना, बेजोरों को सारे जोर नसीब फरमा, जोर वालों में मोहब्बत मुबद्दत नसीब फरमा, घरों में मोहब्बत नसीब फरमा, झगड़ों को ख़त्म फरमा, एक दूसरे में मोहब्बत नसीब फरमा, लाउल आलमीन एक दूसरे में मोहब्बत नसीब फरमा, हसद को ख़त्म फरमा, अल्लाह मर्दों में औरतों में एक दूसरे का हसद, एक दूसरे से बुग्ज, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से परेशानी, अल्लाह तो उसको ख़त्म फरमा, आपस में मोहब्बत मुवद्दत नसीब फरमा, हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हलाल रोज़ी नसीब फरमा। लाउल आलमीन सारे मरहूमिन मरहूमात की मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारे एक दोस्त साउथ अफ्रीका में शब्बीर भाई अमोद, उनका इंतकाल हुआ कल परसों, इलाहुल आलमीन उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। ऐ अल्लाह हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे, बहुत ही मोहसिन थे, ऐ अल्लाह उनको कब्र में इलाहुल आलमीन अपनी करोड़ा रहमत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह करबत करबत पर सुकून नसीब फरमा, ऐ अल्लाह उनकी उनके औलाद को उनके घरवाली को अल्लाह सब्र जमील नसीब फरमा, इलाहुल आलमीन ऐ अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा, और जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं सब की मगफिरत फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं मांगी है अपने फजल व करम से तू कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिह।